हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो नवे स्कंद का नाम है ईशानु कथा। ईश का मतलब भगवान, अनु का मतलब अनुगामी भक्त। तो भगवान की और भगवान के भक्तों की कथा के श्रवण से जो हृदय में वासनाओं के बीज होते हैं वो भी नाश हो जाते हैं, वो हृदय को पवित्र कर देता है पूर्ण रूप से और दशम स्कंद जो सबसे बड़ा 90 अध्याय का है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन है उस स्कंद की भूमिका है नवा स्कंद। वो भूमिका है, इसके बाद दशम स्कंद शुरू होगा। सो सूर्य वंश क्षत्रियों के दो वंश चलते हैं, एक सूर्य भगवान से चलता है जो बुद्धि प्रदान होता है और जो एक चंद्रमा से चलता है वो कोमलता प्रदान होता है। तो पहले सूर्य वंश का वर्णन आता है, सूर्य देव विवस्वान उसका नाम है और भगवत गीता में तो आता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने भगवत गीता का ये ज्ञान पहले सूर्य देव को दिया। उस सूर्य देव का बेटा है वैवस्वत मनु। यह अभी आत्मा जो मनु इस वक्त इस ब्रह्मांड का संचालन चला रहा है उसका नाम है विवस्वत मनु। उसका दूसरा नाम है सर्दवान। ये सूर्य देव का पुत्र है। सूर्य देव के दो पुत्र अश्विनी कुमार भी हैं जो देवताओं के वैद्य हैं। सूर्य देव का पुत्र शनि देव भी है और यमराज भी है, ये भी सूर्य पुत्र है और यमुना जी भी सूर्य की पुत्री है। और भी दो पुत्र सूर्य है के हैं जो आगे मनु बनेंगे इसके अलावा भी। और दो पत्नियों का भी सूर्य के वर्णन है, एक संज्ञा और दूसरी छाया है। ये बहुत मुश्किल है असल में विश्वास करना। ये सूर्य जो दिख रहा है ये तो गोला दिख रहा है। इसका एक प्रेसिडेंट है, उसका नाम है विवस्वान और उसका परिवार है और उसका रथ है, उसके ऊपर वो चलता है। तो ये जो बात बहुत मुश्किल मानना, इतना आसान नहीं है मानना इसको। इसके ऊपर विश्वास करने के लिए केवल शास्त्र का प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं। इसलिए हम कभी पूछते हैं इस बात को विश्वास कैसे करें। आपसे ये पूछा जाए कि एक देश है जर्मनी, उसका एक प्रेसिडेंट है, आप मानते हो क्या? मानते हो क्या? आप गए देखा मिले हो? नहीं, जर्मनी गए नहीं, जर्मनी के प्रेसिडेंट को मिले नहीं। मानते हो कि एक प्रेसिडेंट है, उसका कोई नाम भी है? कैसे मानते हो? न्यूज़पेपर में पढ़ा है, यही ना? इसका मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन जो पेपर में मिलती है उसके आधार पे उसको मानते हो कि कोई देश है उसका प्राइम मिनिस्टर है। और न्यूज़पेपर की उम्र कितनी होती है? एक दिन भी नहीं होती, आधा दिन भी नहीं है। एक बार पढ़ा फिर फेंक है, उसकी वैल्यू भी इतनी है। उसकी बात के ऊपर हमारे को विश्वास है कि एक देश है उसका एक प्रेसिडेंट है और उसका भी परिवार है, सब मानते हैं उसके ऊपर। और ये वेद व्यास ने सारे वेदों में विस्तार करके लिखा है कि एक सूर्य देव है, उसकी बात के ऊपर विश्वास नहीं होना है। देखो ना कि हमारा पक्षपात है कि नहीं। अखबार की बात के ऊपर विश्वास है, पत्रिका की बात के ऊपर विश्वास है, लेकिन वेद की बात के ऊपर विश्वास नहीं। डाउट बोले पता नहीं सूर्य देव कैसा होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे उधर जल तो नहीं जाता रहेगा तो, और सूर्य में इतने सूर्य में गर्मी होती है और वो सारा बना हुआ ही अग्नि का है, उसका शरीर ही अग्नि का प्रकाश ही निकलता है अंदर से। तो जो जो जैसा लोक है उसमें उसी की प्रधानता से वो बना हुआ होता है। तो ये बात सूर्य देव का बेटा विवस्वान और विवस्वान सूर्य देव उसका बेटा विवस्वत मनु और उसको 10 पुत्र हुए, उनसे सूर्य वंश शुरू हुआ। तो पहले पुत्र का नाम पहला एक पुत्र हो ऐसी कथा है, मैं बना बता देता हूँ। सिर्फ रोचक कथा है। वशिष्ठ जी को कहा कि यज्ञ करो, हमारे को पुत्र की प्राप्ति हो। और जब यज्ञ शुरू हुआ तो यज्ञ के अंदर आहुति जब डाली तो बेटी पैदा हो गई। अब तो महाराज कहते हैं विवस्वत मनु, गुरु जी हमने तो बेटा चाहा था, हमारा वंश चलना चाहिए, बेटी हो गई। गुरु जी ध्यान करके कहते हैं आपकी पत्नी उस श्रद्धा ने कोई बेटी चाहिए। बोला नहीं, हमको बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। तो वशिष्ठ ने कहा कोई बात नहीं, हम मंत्र से इनका लिंग चेंज कर देते हैं, ये आपका बेटा बन जाता है। ये पहली से चेंज की ऑपरेशन हो गई, वो लड़की लड़का हो गया, वो लड़का हो गया। अब मनु जी का ये लड़का एक बार घोड़े के ऊपर चढ़ के घूमने गया, और घूमने कहाँ गया, इलावर्त वर्त में जहाँ भगवान शंकर और पार्वती रहते हैं। एक बार कुछ ऋषि आ गए थे, पार्वती स्नान कर रही थी तो कहा कि यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। शंकर जी ने कहा आज के बाद यहाँ कोई भी आएगा तो वो स्त्री हो जाएगा, घोड़ा होगा तो घोड़ी, आदमी होगा तो लड़की, और ये घोड़ा लेके सीधा उधर गया और ये फिर वापस लड़की हो गई और घोड़ा घोड़ी हो गई। और जब ये लड़की हो गई इसका नाम हो गया इला। और उस वक्त चंद्रमा का बेटा बुद्ध घूमता हुआ इस लड़की से मिला और इनके साथ गंधर्व विवाह कर दिया, और इनको एक बेटा हुआ, उसका नाम हुआ पूर्ववा, और पूर्ववा से चंद्रवंश चलेगा। ये यहाँ याद रखने का। वशिष्ठ जी ने पूछे कि हमारे बेटे नहीं दिख रहे हैं राजा के, ध्यान किया तो शंकर जी वहाँ लड़की बन के बैठा हुआ है। अब वशिष्ठ जी ने जाके शंकर जी को प्रार्थना की, शंकर जी ने कहा यहाँ तो विधान ऐसा है, पार्वती को मैंने वचन दिया है, अब आए हो तो ले जाओ, अब ये है कि एक महीना लड़का एक महीना लड़की रहेगी। और विवस्वत मनु कहता है ऐसे देते से कैसे राज चलेगा, अब दूसरा बेटा होना चाहिए। फिर एक बेटा उनका महाराज सूर्यवंश में शरियाती नाम का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध राजा हुआ। हमने पहले दिन आपको बताया था शरियाती का बेटा आनंद जिसने द्वारका को धरती से उतारा, उस शरियाती महाराज की एक बेटी थी। उस बेटी के साथ महाराज च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए, और च्यवन ऋषि के आश्रम में गए तो राजा अपने सारे मंत्रियों के साथ गए और च्यवन ऋषि ने सबका स्वागत किया। च्यवन ऋषि तब बिल्कुल बूढ़े हो गए थे, आंखें अंदर चली गई थी, बाल सफेद थे, बड़ी जटाएं थी, कोई सहारे उन्हें जो उठाता था। ये जो लड़की सुकन्या थी शरियाती जी की, उसने कोई चमकती हुई चीजें धरती के अंदर एक होल में देखी तो तिनका लेके उसकी आंख में डाला तो खून निकला, बड़ी डर गई। और ऐसे होने से एकदम राजा और राजा के सारे मंत्री गणों का हवा पानी बंद हो गया, पेट फूलने लगा, परेशान हो गए, क्या हो गया। पूछा बेटी क्या तुम, बोला पता नहीं क्या था, मैंने यहाँ तिनका डाला, कोई अदृश्य रूप में ऋषि तपस्या करे होंगे, तुमने अपराध कर दिया। च्यवन ऋषि को जाके कहा हमारी बेटी से गलती हो गई है, आपके आश्रम में कहीं तिनके से किसी को चोट लग गई है। ऋषि ने कहा आपकी बेटी से कुछ हुआ है, ऐसे बेटी को आंख ऊपर करके देखा, महाराज शरियाती समझ गए कि महाराज की विवाह करने का विचार है, और महाराज के भय से उस बूढ़े च्यवन को ये अपनी बेटी सुकन्या विवाह करके महाराज शरियाती ने दे दी। महाराज शरियाती वापस राज में चले गए कि कहीं ऋषि नाराज न हो जाए। शरियाती ने कहा विवाह तो हो गया, मैं बूढ़ा हूँ, ये लड़की तो बच्ची है। अश्वनी कुमारों को बुलाया, अश्वनी कुमार तुम देवताओं के वैद्य हो, डॉक्टर हो, तुम्हारे को वो अमृत नहीं देते, देवता नहीं मानते, मैं तेरे को अमृत दिलाऊंगा, तुम मेरे को जवान बनाओ। ओह, अश्वनी कुमार ने कहा अच्छी बात है, ये तो हमारा कंप्रोमाइज अच्छा है, एक अमृत के कुंड के अंदर तीनों गए अंदर, तीनों बाहर निकले, तीनों नौजवान। अब तो बेचारी सुकन्या कहती है मैं पतिव्रता हूँ, मेरे पति ने जहाँ विवाह किया मैं उसको स्वीकार किया, अब मेरा पति कौन है बताओ। तब दोनों अश्वनी कुमार ने कहा ये तुम्हारा पति है। अब तो च्यवन जी जवान हो गए, तब से च्यवनप्राश चल पड़ा। च्यवनप्राश की मार्केट ये कथा के बाद चली, उसका नाम ही च्यवनप्राश हो गया। अब तो शरियाती महाराज एक दिन आया कि मैं अपने जामाता को जमाई को ले जाऊं, एक यज्ञ कराना है। उधर आके देखा है तो लड़की मेरी किसी नौजवान लड़के के साथ बैठी है। शरियाती कहते हैं कुलीन मेरी कन्या, तुम्हारे को मैंने संत ऋषि से शादी कराई थी और अब तुम ये नौजवान के साथ कैसे बैठे हो। बोला ये पिताजी अश्वनी कुमार की कृपा से ये आपका जमाई जवान हो गया है। तो उसको लाके यज्ञ कराया, उस यज्ञ के अंदर जब अमृत भर रहा था तब कहा कि अश्वनी कुमारों को अमृत मिलेगा। देव इंद्र नाराज हो गया, वज्र निकाल के उठाया, कहते तो शरियाती को ही मार देंगे, इसके पास बल इतनी शक्ति थी। महाराज चवन ने उसका हाथ उधर ही रोक लिया, बोला आज के बाद ये दोनों अमृत पियेंगे। ये यहाँ शजादी महाराज के वंश का वर्णन हुआ। इस वंश में आगे चल के मांधाता राजा हुए हैं, जो मथुरा के राजा थे, और मांधाता राजा के यहाँ सोबरी मुनि आके विवाह करके उनके साथ, उनकी लड़का ने उनके साथ विवाह किया था। इस वंश में आगे चल के महाराज अम्बरीश होते हैं, जिसकी बहुत बड़ी सुंदर कथा है कि जिनकी रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र खड़ा हो गया। आगे अम्बरीश महाराज द्वादशी का व्रत किया, द्वादशी को पारण करने का समय हुआ, व्रत खोलने का, दुर्वासा ऋषि आ गए, उसको भोजन खिलाने के बगैर तो खा नहीं सकते हैं, और ऋषि थोड़ी देर कर दी। पुरोहित ने कहा नहीं खोलोगे तो फल नहीं मिलेगा, खा नहीं सकते हैं मेहमान को खिलाने के बगैर, अतिथि खाएगा तो पानी पी लो, पानी पीने से खाना भी नहीं होगा, व्रत भी बच जाएगा। पानी पी लिया और दुर्वासा ने कहा क्यों आप राजा लोग इतने मर्यादाहीन हो गए हो, किसी को खिलाने से पहले खा जाते हो? ऐसे ही क्रोध में आकर दुर्वासा ने एक बाल झटका और उससे कृत्या बनी, और कृत्या अम्बरीश को ऊपर गई, और उस वक्त भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और कृत्या को मार दिया, और अम्बरीश के पीछे सुदर्शन चक्र भागा। अब अम्बरीश अपने दुर्वासा के पीछे सुदर्शन चक्र भागा, दुर्वासा रक्षा के लिए ब्रह्मलोक गया। ब्रह्मा जी ने क्या हुआ, बोले देखो चक्कर आ रहा है, बोले जिसका चक्कर है उसके पास जाओ, हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो शंकर जी के पास गए, शंकर जी का तो हंस अवतार है, दुर्वासा शंकर का अवतार है। वो शंकर जी ने कहा नहीं चक्कर में हम नहीं पड़ते, तो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु का मैं भक्तों के अधीन हूँ, अहम भक्त प्राधीन हूँ, भक्तों का किया, देखो मेरा कोई अपराध करता है तो भक्त छुड़ा देते हैं, लेकिन भक्त का कोई अपराध करता है तो मैं नहीं छुड़ा सकता, उसी के पास वापस जाना पड़ेगा। बस मैं आपको बताता हूँ यही एक रास्ता है। वो बेचारा वहां से दुर्वासा वापस आया, एक साल तक अम्बरीश महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे उस, और आते ही प्रणाम, नहीं ब्राह्मण प्रणाम मत करो, चक्कर को प्रार्थना की चक्कर इसको मुक्त कर दो। अब अम्बरीश महाराज की महिमा ऐसी है कि वो जस पांव भगवान के मंदिर जाने के लिए, हाथ भगवान के भक्तों की सेवा, आंखों से भगवान का दर्शन करे, नाक से भगवान की तुलसी को सूंघे, मुख से भगवान का गुणगान करे, ऐसा सुंदर वर्णन है कि अद्भुत ये भक्त था। इसके बाद इस वंश के अंदर बाहुक महाराज की कथा आती है। महाराज बाहुक तपस्या करने के लिए चले गए, और बाहुक महाराज का जैसे ध्यान हो गया तो पत्नी उसके साथ सती हो रही थी। उस वक्त ऋषि वहां आयुष ने कहा कि आप गर्भवती हो और गर्भवती सती नहीं हो सकती है। तो महाराज के मरने के बाद उनका पुत्र था, तो दूसरी रानियों ने कहा इसका बेटा हो जाएगा तो ये राजमाता हो जाएगी, उनको विष दे दिया। लेकिन उसकी तपस्या इतनी थी कि बच्चा पैदा हुआ विष के साथ, तो उसका नाम हो गया सगर। छह मतलब सात और गर मतलब विष, तो विष के साथ बच्चा पैदा हुआ। वो महाराज सगर बड़े प्रतापी राजा हुए। दो रानियों से, एक रानी से तो पुत्र हुआ अंशवंश, एक रानी से 60,000 पुत्र हुए। अश्वमेध यज्ञ किया, यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा के ले गया, कपिल देव के आश्रम में बांध दिया, और फिर इसके 60,000 पुत्र ढूंढते ढूंढते उधर घोड़े को घोड़ा उधर देखा, और समझा कि महाराज ये कपिल ऋषि ने चुराया है, तो कपिल ऋषि के ऊपर आक्रमण करने गए। कपिल ऋषि ने आंखें खोली, सारे भस्म हो गए, वापस 60,000 पुत्र ही नहीं आए। अब तो बड़ा पुत्र तो तपस्वी था, वो तो चला गया, उसका पोता अंशुमान ढूंढते ढूंढते घोड़े को ढूंढा, घोड़ा मिल गया, था कपिल देव को प्रार्थना की, हे कपिल देव, हे गुरुदेव, हमारे 60,000 ताऊ यहाँ इसको ढूंढने आज। बोला ये भस्मी उनकी है, वो मैं तो नहीं जानता, उन्होंने अपराध किया और वो भस्म हो गए। बोला इनका उद्धार कैसे हो? बोला गंगा जी धरती के ऊपर आए और उससे इनका जल इनके ऊपर छड़कोगे तो इनका उद्धार होगा। अब अंशुमान घोड़ा लाया, महाराज सगर का यज्ञ संपन्न हुआ, अंशुमान राज करके अपने बेटे दिलीप को राज दिया, हिमालय में जाके गंगा को उतारने का तपस्या करने लगे। अंशुमान का शरीर समाप्त हो गया, फिर दिलीप राज अपने बेटे को देके तपस्या की तीसरी पीढ़ी में दिलीप का बेटा भागीरथ गंगोत्री में जाके उस शिला के ऊपर बैठ के गंगा का आह्वान किया। तीन पीढ़ियों की तपस्या के बाद गंगा उतर के माता के रूप में, जो जिसका मगरमच्छ उनकी सवारी है, मगर उसके ऊपर खड़ी हो गई। भागीरथ कहता है तीन पीढ़ियों की तपस्या के बाद माता जी आप प्रकट हुई हो, हमारे ताऊजनों का उद्धार करना है, आप नीचे उतरिए। बोला मैं आना तो चाहती हूँ, आपकी तपस्या से प्रसन्न भी हूँ, लेकिन मैं उतरूंगी तो मेरा इतना वेग होगा कि मैं तो पाताल में चल जाऊंगी, आपका काम तो होगा नहीं, तो मेरा वेग कौन सहन करेगा।
और दूसरा बहुत से पापी लोग मुझमें स्नान करेंगे तो मैं कैसे पवित्र हूँ। अब फिर भागीरथ ने तपस्या की, केदारनाथ में जाके भगवान शंकर को मनाया कि आप गंगा का वेग अपने जटाओं में धारण कर लो। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मैं ये जन कल्याण के लिए कार्य करूंगा, गंगा को कहो तुम उतरो, तुम नहीं पाताल में जाओगी, मैं जटाओं में आपको समा लूंगा। तब ऋषि जो वहां तपस्या कर रहे थे उन्होंने कहा गंगा मैया को बोलो पापी तुम में स्नान करेंगे और जब साधु संत आएंगे तो तुम पवित्र हो जाएगी, हम आपके किनारे पे रहेंगे और हम स्नान करेंगे तो आप पवित्र हो जाओगी। अब तक गंगा का आवाहन किया, कहा कि शंकर जी जटाओं में धारण करेंगे और शंकर जी ने गंगा को जटा में धारण किया। आज शंकर जी का नाम हो गया गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले शंकर जी हो गए। और शंकर की जटाओं में गंगा आ गई थोड़ी देर के लिए, फिर गंगा नीचे उतरी, बोला ये संत आपके किनारे पे रहेंगे, आपको आपके पाप सब धो देंगे। अब भागीरथ का रथ आगे चला, जहाँ गंगा उतरती है नीचे उधर उसका नाम भागीरथी है। फिर वो अलकनंदा से मिल जाती है तो फिर उसका नाम हो जाता है गंगा। गंगा का मतलब बहने वाली। लेकिन वो जब बंगाल में जाती है तो एक जामु ऋषि वहां तपस्या कर रहा था, गंगा ऐसी वेग से जा रही थी तो उसकी पूजा की सामग्री ले गई, उसने गंगा को पी लिया सारा। भागीरथ पीछे मुड़ के देखता है गंगा नहीं आ रही। ये महाराज गंगा कहां गई? बोला मैंने पी ली। क्यों पी ली? बोला वो मेरी सामग्री ले जा रही थी। नहीं, हमारे पूर्वजों का उद्धार करना है, गंगा जी को आप मुक्त करो। फिर जानू की पुत्री के रूप में गंगा उन्होंने प्रकट की, इसलिए बंगाल में गंगा का नाम जाह्नवी है और असल में गंगा का नाम है भागी विष्णुपदी। तो गंगा असल में गंगा के अवतरण की कथा ये है कि वामन देव भगवान जिसकी अभी कथा की, वो जब सीधा पांव का अंगूठा ऊपर ब्रह्मांड के ऊपर एक पर्दा है उसका छेदन किया और पर्दे के उस तरफ आध्यात्मिक जगत में ब्रजा नदी का जो जल है उसने भगवान के अंगूठे को धोया तो वो पानी नीचे गिरा, उसका नाम हुआ भगवान के चरणों से गिरा हुआ ब्रह्म द्रव्य। द्रव्य का मतलब जल, तो उसका नाम हुआ गंगा, उसका नाम असल में ब्रह्म जल। वो जैसे नीचे गिरा पांव धोके ब्रह्मा जी ने एकदम कमंडल में ले लिया और उस वक्त सीधा वहां से जल ये ध्रुवलोक में गिरा और ध्रुवलोक से विमान में सारे देवता इस जल को अपने देवलोक में लाए, विमानों में भर भर के लाए और फिर देवलोक से गंगा एक धरती के ऊपर उतर के आई और भागीरथ के साथ गंगा सागर पहुंची। वहां जाके सागर में मिलती है गंगा जी, कई नदियां रास्ते में मिलते हैं। तो यहाँ सागर के वंश का वर्णन है, गंगा के अवतरण का वर्णन है। फिर सूर्य वंश में आगे जाके एक राजा सूर्यवंश का आज भी, उसका नाम मारू है और वो कल्प ग्राम में तपस्या कर रहा है। वो एक चंद्रवंश का राजा देवापी वो भी तपस्या कर रहा है और ये जब दोबारा सतयुग शुरू होगा तब ये दोबारा अपना सूर्यवंश और चंद्रवंश शुरू करेंगे। तो ये लुप्त नहीं है, दो इनके अभी वंश इस धरती के ऊपर तपस्या योग अभ्यास में बैठे हुए हैं। इसके बाद आगे इस वंश में कथा आती है कि इक्ष्वाकु महाराज की, ये दूसरा सूर्य वंश का राजा, मनु के 10 पुत्र हैं उनमें से एक इक्ष्वाकु है और इक्ष्वाकु के वंश में आगे चल के महाराज अज, अज के बेटे दशरथ और दशरथ के बेटे भगवान रामचंद्र के अवतार का वर्णन है। और रामचंद्र की कथा श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आपने विस्तार से राम कथा सुनी है इसलिए मैं 3 अध्यायों में छोटे में संक्षेप में राम कथा का वर्णन करता हूँ। तो राम कथा का अपने पास समय नहीं है, कभी राम कथा अलग सुनेंगे भगवान ने कहा तो, इसलिए उसको हम तो इतना ही 4 शब्दों में जैसे कहते हैं कि पुत्र यज्ञ से श्रृंगी ऋषि ने पुत्र यज्ञ किया और 3 पत्नियों को 4 पुत्र हुए और 4 पुत्र विश्वामित्र के साथ गए और यज्ञ संपन्न किया और जनकपुरी में जाके सीता का वर्ण किया और फिर मैं वन में गए और सीता का हरण हुआ और फिर रावण का मरण हुआ और फिर रामचंद्र का राजतिलक हुआ। ये कथा पूरी। अभी ये अलग एक, कभी कभी इसको करने का इच्छा होता है, बड़ी सुंदर कथा होती है, लेकिन अब आज समय नहीं है अपने पास। इस कुल में एक और राजा है, उसका नाम है निमि। महाराज निमि निमस में बैठता है, निमिष मतलब जो आंख पलक झपती झपकती है इसमें। निमि महाराज को एक यज्ञ कराना था और प्रश्न, और जो इनका गुरु वशिष्ठ जी है उसको इंद्र ने बुलाया यज्ञ करने के लिए, वो इंद्र के पास चला गया। और महाराज ने कहा जीवन के ऊपर कोई भरोसा थोड़ी है, आज आ जाए कल नहीं है, अच्छा काम तो अभी कर लेना चाहिए, अच्छे काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए, मन में आ जाए कि अच्छा काम करना है तो तत्काल कर देना चाहिए, देर करने से मन बदल जाता है। एक आदमी जहाज में जा रहा था, जहाज में मछली खा ली, कांटा अटक गया इधर, कांटा अटक जाए तो आदमी कितना दुखी हो, बड़ा दुखी हो के अनाउंसमेंट, कोई डॉक्टर है जहाज में, एक डॉक्टर उस जहाज में था, डॉक्टर ने कांटा निकाला तो कहता है डॉक्टर साहब आपको क्या फी दूं, बोला जब कांटा अटक गया था तुम्हारे मन में विचार आया था उसका आधा दे दो, बोला मैं लुट जाऊंगा, बोला क्यों, मैंने कहा कांटा अटका जो मेरे पास है ले लो, मेरा कांटा निकालो, जब तकलीफ आती है तो कहते सब ले लो, जब देने का टाइम होता है तब कहते अब डॉक्टर साहब कांटा निकल गया है, धरती पे 500 लेते हो तो यहाँ 2000 ले लो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो उस वक्त देने की इच्छा होती है लेकिन आदमी का मन बदल जाता है एकदम। वो कोई तिरुपति ने क्या एक भक्त ने कहा भगवान वैसे तो मेरे को लाख की जरूरत है लेकिन जो भी दोगे आधा आपको दे दूंगा, मेरे ऊपर कृपा करो, काम किया 50,000 मिले, अब आधा देने का टाइम आया, बोले भगवान इतने होशियार हो पहले अपना हिस्सा काट के उतना ही देते हो, आपने अपना हिस्सा पहले काट लिया। तो लोग बहुत होशियार हैं, इसलिए जब अच्छा विचार दिल में आए तत्काल कर लेना चाहिए, और बुरा विचार आए तो जितना दूर उसको भगा सको उतना भगाओ, उससे बचना चाहिए। तो ये अच्छा विचार की कथा हो रही है किसकी, अरे कृष्ण किसकी कथा हो रही है, नामा मुनिमी राजा ने एक और ब्राह्मण को बुलाया, यज्ञ कराया, यज्ञ पूरा हुआ, ब्राह्मण दक्षिणा दे के था वहां से जल्दी जल्दी आके वशी मुझे कहां से आ रहे, बोला मुनिमी महाराज ने यज्ञ कराया, बोला मेरा शिष्य कैसे यज्ञ कराया दूसरे से, जाके सीधा वशिष्ठ ने कहा तुमने दूसरे को बुला के यज्ञ कराया, मैं शराब देता हूँ, बोलते मुनिमी महाराज ने कहा क्या इंद्र के पास ज्यादा दक्षिणा मिलने की इसलिए वहां गए थे, मुझे क्यों छोड़ गए, मैं कहता हूँ तुम्हारा भी शरीर छूट जाए, उधर से वशिष्ठ जी का शरीर छूट गया, यहाँ मुनिमी का छूट गया, एक दूसरे को शराब दे के मार दिया। वशिष्ठ फिर वरुण और मित्र के वहां वीर्य से दोबारा पैदा हुए और यहाँ तेल के अंदर मुनिमी महाराज के शरीर का मंथन किया गया, उसने बोला मैं शरीर में नहीं रहना चाहता हूँ, तो उनका नाम हो गया विदेह राज, और उनके शरीर के मंथन हुआ तो उसके अंदर से पुरुष हुआ, उसका नाम हुआ जनक, और वो मिथिला, और उन्होंने मिथिला की स्थापना की और मिथिला नरेश कहलाए, इक्ष्वाकु महाराज ने अयोध्या की स्थापना इसे इक्ष्वाकु महाराज ने कराई है। तो यहाँ सूर्य वंश के वर्णन में बहुत सुंदर ऐसे ऐसे राजाओं का वर्णन है जिन्होंने जैसे गंगा लाए, भगवान ने सुदर्शन चक्र ने जिनका रक्षा की, और भगवान रामचंद्र के अवतार का वर्णन इस वंश में है। अब चंद्रवंश के अंदर, चंद्रवंश कहाँ से शुरू होता है, चंद्रमा से, चंद्रमा किसके पुत्र हैं, पहले दिन आपको बताया था अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र है बुध, ये बुध बुद्धिमान है, बृहस्पति की पत्नी से उत्पन्न हुआ है चंद्रमा के द्वारा, और इस बुध का विवाह आपको बताया गंधर्व हुआ इल्ला से, सुदामनी जो लड़का था वो लड़की हो गई उससे हुआ पुनर्वा। अब चंद्रवंश शुरू होता है पुनर्वा से, महाराज पुनर्वा एक बार चले गए स्वर्ग में, पुनर्वा महाराज को इंद्र लेके इंट्रोडक्शन करा रहा है कि ये देखो ये वरुण देव है, ये अग्नि देव है, तो एक अर्थ देव था और एक काम देव खड़ा था, उनका तो उनका तिरस्कार कर दिया, उसको कहा ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने शराब दे दिया कि पुरोरा महाराज तेरे जीवन में काम और अर्थ हमेशा तुम्हें तकलीफ देंगे। और पुरोरा महाराज धरती के ऊपर बड़ा चक्रवर्ती राजा हुआ, और एक शरद की अप्सरा को शराब मिला के तुम धरती के ऊपर जाके मानव से विवाह करो, और इन अप्सरा का नाम था उर्वशी, और ये असल में स्वर्ग की अप्सरा नहीं है, ये तो भगवान नर नारायण ने अपनी जांघ से उत्पत्ति करके और कामदेव को दीदी के इंद्र को मेरी तरफ से जाके भेंट दे देना, क्योंकि ये भगवान के अंग से उत्पन्न है, इसके द्वारा भगवान का वंश चलना है। उर्वशी धरती के ऊपर आई और नारद ने कहा पुरवरा ऐसा सुंदर है उसके साथ विवाह करो, तब वो पुरवरा को तीन शर्त रखे, उर्वशी ने कहा तुम्हारे से मैं विवाह करूंगी, ये दो भेड़ के बच्चे मेरे साथ है, इनको आप इनकी आपको रक्षा करना है। महाराज ने कहा इसने राज की रक्षा करता हूँ, भेड़ के बच्चे की रक्षा कौन सी मुश्किल है, बोला दूसरा ये मेरा है कि मैं कभी आपको निर्वस्त्र नहीं देखूं सवाय रात के, तीसरा शर्त यह कि मैं केवल घी खाऊं, तब उसके नीचे लिखा है कि देवता लोग घी खाते हैं केवल, और कुछ नहीं खाते हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी केवल घी खाते थे, तब देवता जैसे लोग थे, जब से तेल आया है तब से हमारा भी तेल निकल गया। घी देवताओं का भोजन है। पुराने जमाने में हम पढ़ते थे तो घर से घी का डब्बा आता था। एक आदमी 5 किलो घी का डब्बा लेके ट्रेन में चढ़ा, और ट्रेन में जगह नहीं थी, वैसे घी का डब्बा टांगा, ट्रेन रुक गई, तो सब आए देखने ट्रेन क्यों रुकी है, तो वो तो चैन थी उसमें टंगा डब्बे को देखा, बोला ये डब्बा किसका है, बोला मेरा है, बोला चैन रुक गई, बोला ये असली घी का है, ये तो ट्रेन भी रुक जाती है, बड़ा शक्ति ये तो घी, तो घी में तो ये शक्ति थी। अब तो घी बच्चे तो ऐसे बिगड़ गए, घी ये दुर्गंध आ रही है इसको, इसे ये नहीं चाहिए हमको, घी घी से तो दिल घी खा तो उर्वशी का केवल घी खाऊंगी। अब तो पूर्णा उर्वशी के साथ बहुत बड़ा आनंद से रह रहे थे। इंद्र ने कहा उर्वशी कहाँ गई, गंधर्व जाओ उतरो उर्वशी को वापस लेके आओ। गंधर्व आए रात को भेड़ के बच्चे चुराए, और उर्वशी कहती है राजा हो मेरे भेड़ के बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते हो, स्त्री की तरह पड़े हो, चूड़िया पहन लिए। क्षत्रिय इसको तो क्रोध आया, ऐसे सोया हुआ था, उठा भेड़ के बच्चों को पकड़ा, गंधर्व ने प्रकाश किया और ये निर्वस्त्र देखा गया, और उर्वशी ने बोला आपने मैं सब वचन तोड़ दिए, मैं जा रही हूँ। उर्वशी चली गई। ये तो उर्वशी के प्रेम में अंधा था बेचारा, सो काम का सुख नहीं मिला। एक दिन घूमते हुए कुरुक्षेत्र में उर्वशी 5 पुरुषों के साथ मिली। इसने उर्वशी को कहा मैं आपके बगैर रह नहीं सकता हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, आप मुझसे विवाह किया था, मेरा संतान नहीं चला है। उर्वशी का साल में एक बार मिलेंगे यही कुरुक्षेत्र में। तो उसके बाद 5-6 बच्चे उर्वशी के माध्यम से पूर्वराव महाराज को हुए। उन 6 में से 2 का वंश चला, जय विजय राय सत्यायु छुटकायु और आयु। आयु के वंश के अंदर आगे धनवंतरी हुए, और इस वंश में आगे चल के ये पूरा वंश एक तरफ, दूसरे तरफ विजय के वंश में जहानु ऋषि हुए, और जहानु ऋषि के वंश में विश्वामित्र की कथा आती है। गाजी महाराज इस वंश में आगे हुए, ये पुरवा के वंश में आगे गाजी महाराज। गाजी महाराज की एक बेटी, उसका नाम सत्यवती, और एक ऋचक ऋषि उससे विवाह करने के लिए आया। तो महाराज ने कहा ये ऋषि है कैसे मेरी बेटी को पालेगा। महाराज ने कहा ऐसे करो 1000 काले घोड़े 1 कान सफेद वाले लाके दो तो लड़की से विवाह कराएंगे। बोला ये कहाँ से लाएगा, उसने वरुण देव की पूजा की, वरुण देव ने ये दे दिए घोड़े और विवाह हो गया ऋचक का सत्यवती। गाधी की पत्नी अपनी बेटी के पास गई कि आपके ऋषि पति को कहो, हमारे जमाई को, कि हमें भी बेटा हो और आपको भी पुत्र होना चाहिए, कुछ चारु बना के दे। तो महर्षि ऋचक ने एक मटके में चारु बनाया अपनी पत्नी के लिए कि पुत्र हो, और एक मटके में खीर बनाई अपनी सास के लिए। और ऋषि स्नान करने गया, और गाधी की पत्नी के मन में आया कि हो सकता है कि मेरी बेटी के लिए अच्छा बनाया हो और मेरे लिए अच्छा नहीं हो। उसने बदली कर दी, उसका उसने दिया, उसका उसने दिया, और ऋषि ने आके कहा कि आपने गलत काम कर दिया, मैंने गाधी की पत्नी के लिए क्षत्रिय का बच्चे का बनाया था और आपके लिए ब्राह्मण का बनाया था, आपने उल्टा काम किया, अब आपका बच्चा जो होगा बहुत भयंकर होगा। पत्नी ने बड़ी विनती की, बोला ठीक है एक जन्म में तुम्हारा पट्टा जमदग्नि होगा, लेकिन उसके बाद परशुराम आएगा और वो सारे संसार के अंदर खून की नदियां बहा देगा, ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय पैदा हो जाएगा, और सासों का तेरे घर में वो विश्वामित्र पैदा होगा, वो आगे जाके ब्राह्मण बन जाएगा। तो ये उल्टा यहाँ ये ऐसे हो गया। तो यह कथा आती है फिर विशेष रूप से विश्वामित्र की, बहुत लंबी कथा है, और विश्वामित्र की लंबी कथा तो अपन नहीं करते हैं अभी। जैसे वाल्मीकि रामायण में 20 अध्यायों में विश्वामित्र की कथा है। दूसरे तरफ से परशुराम की कथा में ये है कि गाधी के घर में आगे पोते के रूप में ये परशुराम जी जब पैदा हुए तो जमदग्नि इनका पिता, रेणु का इनकी माता, 3 बड़े भाई को एक दिन कार्तवीर वीर अर्जुन, ये चंद्रवंश का एक बहुत बड़ा राजा है, सहस्रबाहु इसका नाम है, इसने रावण को बंदी बनाया था। ये नर्मदा में 1000 हाथ लंबे करके ऐसे, तो नर्मदा रुक गई, रावण पूजा कर रहा था, उसकी सामग्री बह गई, रावण ने इसको ललकारा और रावण को उसने बांध के रख दिया। वो सहस्रबाहु अपनी सेना के साथ जमदग्नि के आश्रम में आया, और आश्रम में कामधेनु गाय से उसकी पूजा हुई, वो गाय को जबरदस्ती ले जाने लगा। तो गाय को ले जाते देखा, उस वक्त परशुराम ने पर्चा उठाया और सहस्त्र बाहु अर्जुन को मार दिया। अब तो सहस्त्र राजा को मार दिया, पिता ने कहा बेटा राजा को मारा है, तुम एक साल के लिए तीर्थ यात्रा पे जाओ। परशुराम तीर्थ यात्रा करके आया, उसके बेटू ने आके परशुराम के पिता का गर्दन काट दिया। महाराज जमदग्नि का बर्तन काट के और गर्दन उठा के ले गए। माँ ने चिल्लाया हे परशुराम हे राम। परशुराम ने आके देखा, बोला माँ भाइयों रुको, मैं जाता हूँ गर्दन लाऊंगा, तब इनके सर के साथ जोड़ना है, तब इसका अपन करेंगे अग्नि संस्कार। परशुराम ने पर्चा उठाया, उसके 1000 बच्चों को मारा दिया, फिर 21 बार क्षत्रियों से क्षत्रियों का संहार करके पूरे भारतवर्ष से क्षत्रियों को भगा दिया। वो क्षत्रिय फिर सिंधु पार करके बहुत दूर दूर तक चले गए, जब वापस लौटे तो उनका नाम आर्य हो गया। अभी भी उनका वंश हमको विश्व भर में मिलता है। फिर वो सर को लाए और सर को वहां रखा। ऐसे एक और कथा परशुराम के साथ भी जुड़ी हुई है, रेणु का, उसकी माँ के विषय में, उसका अपने हाथ से उसका गर्दन काटा और फिर पिता ने उसका वापस उसको जीवित कर दिया। तो यहाँ परशुराम का ये वर्णन अवतार भगवान एक के कहता है। और परशुराम ने राज सब लिया, सब पुत्रों को, मैं ब्राह्मण हूँ राज नहीं करूंगा, ऐसे अंजलि में जल लेके कश्यप को सारा राज दान करके खुद महेंद्र पर्वत पे गए, जगह नहीं है। तो ये केरल का जो समुद्र की पट्टी है, ये समुद्र से धरती परशुराम ने ली और वहां फिर रहने लगे परशुराम जी। तो फिर राम अवतार में भी प्रकट होते हैं, उसका हमने वर्णन सुना है। और दूसरी तरफ आयु के वंश के अंदर वैसे धनवंती हुए, लेकिन विशेष जो महाराज हुए उसका नाम है ययाति। ययाति महाराज शिकार करके हुए जा रहे थे तो एक कुएं के अंदर एक लड़की को देखा नंगन अवस्था में, और ये लड़की बेटी थी शुक्राचार्य की, और इसका नाम था, क्या नाम था शुक्राचार्य की बेटी का नाम क्या है? हाँ जी, देवयानी, समृष्टा राजा की बेटी का नाम है। अच्छा, कथा ऐसे होती है, समृष्टा विश्वपर्वा राजा की बेटी है और देवयानी शुक्राचार्य की, दोनों सहेलियां हैं, दोनों नारंगी कहीं कपड़े बाहर रखे थे। अचानक वहां से कुछ ऋषि आए तो जल्दी में कपड़े बाहर एक दूसरे ने गलती से पहन लिए, और तब समृष्ट कहती है हम राजा और तुम ब्राह्मण भिखारी, तुमने हमारे कपड़े पहने हैं। ऐसे लगता है जैसे घी आरती के ऊपर कोई कौवा आए और उसको उठा के जाए। अब तो देवयानी को क्रोध आया कि हम ब्राह्मण तुमको राज तिलक देते हैं, तुम तब राज करते हो, वो कि तुम हमारे घर भिक्षा देते। झगड़े के अंदर उसके सारे कपड़े उतार के देवयानी के, देवयानी को कुएं में फेंक दिया और देवयानी कुएं के अंदर। महाराज पानी के लिए तो देखा लड़की है तो अपना कपड़ा ऊपर से डाला, लड़की ने कपड़ा ढाक लिया, फिर उसको बाहर निकाला हाथ देकर। तब देवयानी बाहर निकल के कहती है आपने हाथ को मेरा पकड़ ही लिया है, अब आप मुझे स्वीकार कर लो। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति के बेटे ने मेरे को शराप दिया है कि ब्राह्मण वर मेरे को मिलेगा नहीं, इसलिए ये विलोम विवाह होगा, क्षत्रिय को ब्राह्मण कन्या से विवाह करना पड़ेगा। आगे चल के देवयानी का विवाह महाराज ययाति से हुआ। और देवयानी ने शिकायत जब जब शुक्राचार्य को किया तो शुक्राचार्य राजा के पास गया, राजा ने हाथ जोड़ के कहा हमारी बेटी से गलती हो गई, अब आप जो कहें वो हम करें, देवयानी जो कहेगी वो होगा। देवयानी का मेरी शादी होगी और ये मेरे साथ दासी होके जाएगी। अब वो राजा की कन्या दासी होके, वो भी दासी होके गई महाराज ययाति। अब देवयानी को दो पुत्र हुए और शर्त ये रखा शुक्राचार्य ने, समृद्धा से पुत्र नहीं उत्पन्न करना। एक दिन समृद्धा ने कहा कि मैं दासी हूँ, मेरा अधिकार है, मुझे पुत्र संतान दो। और देवयानी से तो दो पुत्र हुए, उसमें मुख्य पुरु पुत्र हुआ और पुरु के वंश में आगे पुरु वंश चलेगा। और दूसरे तरफ इस समृष्टा के यहाँ यदु, तीन पुत्र हुए उसमें एक यदु हुआ। तो यदु कुल, और जिस वक्त पता लगा देवयानी को के समृष्टा को भी पुत्र दिया है ययाति ने, वो अपने पिता के पास गई, पिता क्रोधित हो गए और ययाति महाराज ने प्रार्थना की तुम बूढ़े हो जाओ, तुमको मना की थी ना, वो बेचारा बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो गया, बोला मेरा अभी तक तुम्हारी पुत्री से विवाह हुआ है और मेरा संतान से अभी मोह नहीं हटा है, मैं ऐसे बूढ़ा कैसे हो? बोला ठीक है, तुम्हारा कोई बेटा तुम्हारे को आयु देगा तो तुम भोग कर सकोगे। तो फिर आके ययाति महाराज ने अपने बेटों से कहा कि मुझे आयु दे दो। तो छोटे बेटे पुरु ने कहा, पिताजी आपको मांगना पड़ा, मुझे शर्म आती है, मेरी आयु ले लीजिए। पुरु की आयु लेके और ययाति ने देवयानी के साथ बहुत समय तक संसार में रहे। फिर एक दिन आपस में कथा करते हैं और उस कथा में बकरे बकरी की कथा करते हैं, अपनी कथा सुनाते हैं कि एक बकरे ने बकरी को जंगल में से निकाला, दूसरी बकरी आई तो झगड़ा हो गया, फिर घर बिगड़ गया और फिर कहा कि बकरा चला गया। तब ययाति ने बोला मैं अब तपस्या करने जाता हूँ। देवयानी कहा फिर मेरे को भी ले चलो। तब पुरु को वापस जवानी दी और पुरु को राजा बनाया और यदु को कहा तुम्हारे को राज करने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो ऐसे आगे पुरु के वंश में महाराज भरत हुए। एक भरत किसके बेटे हैं? ये दुष्यंत और शकुंतला के बेटे। ये महाराज दुष्यंत हुए और कणव ऋषि के आश्रम में शकुंतला से मुलाकात हुई, गंधर्व विवाह हुआ। और महाराज भरत, ये इतने भरत प्रताप, ये भगवत गीता में जो अर्जुन को भरत वंशी कहते हैं वो इस महाराज भरत का उल्लेख है। और ये भरत महाराज ने इतने यज्ञ किए थे गंगा और जमुना के किनारे के, इनका नाम रे 5 वर्ष के शेर को पकड़ के लाते थे, इस भरत की विशेषता ये है। और ये महाराज भरत के आगे 3 रानियां थी लेकिन एक भी पुत्र नहीं हुआ। तब मित्र आदि देवताओं ने उनको भरद्वाज नाम का पुत्र दिया। फिर इस भरद्वाज के वंश में आगे चल के कुरु वंश शुरू होता है और कुरु वंश में फिर शांतिनु, फिर भीषम और उसके बाद पांडु होता है। पांडु के 5 पांडव होते हैं, दुर्योधन होता है, धृतक, ये पूरा। फिर अर्जुन के बेटों का वर्णन है, भीम का बेटा घटोत्कच सब जानते हैं, अर्जुन का अभिमन्यु का सबको पता है, लेकिन एक अर्जुन का बेटा मणिपुर की जो थी प्रिंसेस उसका नाम था उल्पी, उससे बेटा था उसका नाम था बब्रुवाहा, वो राजस्थान में खाटू श्याम जी जिसके गर्दन की पूजा होती है वो अर्जुन का बेटा है और वो उसका गर्दन भगवान श्री कृष्ण ने काटा था और उसको वरदान दिया था। तो यहाँ तक के वर्णन है सबका। और फिर कथा करते हैं कि आगे यदु के वंश में, ये विशेष रूप से जहाँ यदु वंश के अंदर आते हैं, वर्णन ये आता है कि देवमीर नाम के एक राजा हुए आगे। और देवमीर की 2 पत्नियां थी, एक वैश्य पत्नी थी और एक क्षत्रिय पत्नी थी। क्षत्रिय पत्नी से सूरसेन पैदा हुआ जिसके घर में वसुदेव का जन्म हुआ और जो वैश्य पत्नी थी उससे प्रजन्य हुआ और प्रजन्य को 5 पुत्र हुए, उसमें बीच वाले का नाम नंद था और उपनंद, सुनंद, नंदन, तो 5। तो ये वसुदेव और नंद बाबा ये आपस में कजन थे, ये आपस में भाई है, इनका दादा एक है देवमीर। और यहाँ कथा करते हुए महाराज कहते हैं सुखदेव कि आगे चल के वसुदेव का विवाह देवकी की बेटी देवकी से हुआ और उनको 7वां पुत्र हुआ बलदेव जी, फिर वो रुक्मणी, फिर रोहिणी का पुत्र हुआ, फिर उनके घर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ऐसे करके 8वां और ये 9वां स्कंद यहाँ समाप्त होता है। तब 10वें स्कंद में एकदम प्रश्न पूछा जाता है, परीक्षित महाराज कहते हैं आपने इतना बड़ा विस्तार से वर्णन किया सूर्य वंश का, चंद्र वंश का, लेकिन मुझे कृष्ण कथा सुनने में बहुत ज्यादा रुचि है और भगवान श्री कृष्ण से मेरा तो व्यक्तिगत संबंध है कि वो मेरी माँ के उदर में मेरी रक्षा करने के लिए आए थे और मेरे दादा अर्जुन के सारथी बने, उस बड़े महाभारत संग्राम में उन्होंने हमारी रक्षा की और आप जैसा बताने वाला मिल जाए गुरुदेव सुखदेव, और ये कृष्ण कथा ऐसी औषधि है जो जन्म मरण से मुक्त करके मन को आनंद दे सकती है, आप सुखदेव जी ये कथा मुझे बताइए। 5वां दिन है, सुखदेव जी कहते हैं कुछ पानी पी लो, जलपान कर लो, 5 दिन से कथा सुन रहे हो। परीक्षक कहता है वो दिन क्या मुझे प्यास लगी थी, मैंने ऋषि का अपमान किया, अब मुझे प्यास नहीं है, भूख नहीं है, आपके मुख से कथा अमृत को सुनते हुए मैं आनंदित हो रहा हूँ, आप इस कथा को आगे बढ़ाइए। अब जब यहाँ बहुत बड़ा ईगरनेस देखा परीक्षित महाराज की कृष्ण कथा सुनने के लिए, पूछना देखा और तीव्रता देखी, तब बिना भूमिका के कथा शुरू कर दी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एक समय की बात है, धरती के ऊपर अत्याचार बढ़ गया, पापी इतने बढ़ गए कि धरती ब्रह्मा जी को लेकर, शंकर और इंद्र आदि को लेकर भगवान को अवतार लेने के लिए प्रार्थना करने को गई। बोले धरती अगर प्रार्थना करने गई तो धरती के ऊपर रहने वाले लोग कहाँ चले गए। धरती के तीन रूप हैं, एक तो भौतिक रूप है जैसे हमको दिखती है, लेकिन इसका देवी के रूप में ये गाय का रूप धारण कर लेती है, और आध्यात्मिक रूप में ये भगवान की भू देवी के रूप में पत्नी है, विष्णु पत्नी है भू देवी। तो देवी यहाँ गाय का रूप धारण करके अपने बेटे ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी ने शंकर को साथ लिया और ये सब क्षीर सागर के किनारे के गए और भगवान को पुरुष सूक्त से प्रार्थना करने लगे। तब वो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने प्रकट होकर कहा, ब्रह्मा जी मैं पृथ्वी के दुख को जानता हूँ, अब ऐसा है कि मैं अवतार लूंगा और आप ऐसे सब देवताओं को कहो कि मैं श्री के साथ आऊंगा, मेरी साथ राधा जी भी आएंगी, वो अपने पत्नियों के साथ यदुवंश में जाके जन्म ले और तत्काल मैं आने वाला हूँ, ऐसे सुखदेव गोस्वामी ने कहा और फिर एकदम कहते हैं। और दूसरे तरफ महाराज उग्रसेन के राज में जो सूरसेन का राजा था उसके भाई की देवक की बेटी देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ और विवाह की विदाई के समय बहुत जो हाथी घोड़े दान दिया, जब लड़की को विदा करने का समय आया तो रथ को चलाने का भार कंस ने अपने ऊपर उठाया जो उग्रसेन का बेटा कहलाता था और उसकी चाचे का लड़का भाई था। तो कंस असल में उग्रसेन का बेटा नहीं है, ये काल में भी राक्षस है जो यहाँ प्रकट हुआ है। कैसे हुआ है इसकी अपनी एक कथा है। ये असुर कंस इस पद्मावती पत्नी है उग्रसेन की, वो विद्रभ देश की है, कालनेमी आकाश में जाते हुए उग्रसेन का रूप धारण करके और बेटे के रूप में इनके यहाँ पैदा हुआ है। तो कंस असुर है लेकिन थोड़ी देर के लिए बहन को विदा करने जा रहा है, आकाश में देवताओं ने देखा कि ये क्रूर कंस ऐसे अगर मेरे भक्तों की सेवा करेगा तो भगवान के आने में देर हो जाएगी। आकाशवाणी हुई कि इसका आठवां गर्भ देवकी का तेरा काल है कंस, ये नहीं बताया कि न बेटी है न बेटा है, आठवां गर्भ। अब कंस का जो प्रेम था बहन का वो तो कपूर की तरह उड़ गया और उसको बालों से पकड़ के नीचे घसीटा और तलवार निकालने मारने को तैयार। देवकी न कहती है भाई मुझे रक्षा करो, न कहती है पति को मेरा को बचाओ, वो शांत खड़ी है। लेकिन वसुदेव ने कहा मेरा धर्म है पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। कहा हे भोजराज कंस, एक तो आपकी बहन है और विवाह का मंगल सूत्र बंधा हुआ है, इस वक्त ये आप मारने की चेष्टा करते हैं ये तो आपका अपयश हो जाएगा और फिर मृत्यु तो किसी न किसी दिन आनी है, कोई न कोई बचेगा तो कोई भी नहीं इस दुनिया में, शाम दाम दंड भेद कहीं नहीं माना। तब वसुदेव ने कहा मौत जब सर के ऊपर हो तब बुद्धि को लगा के उसको बचाना चाहिए, बच्चा होगा नहीं होगा क्या पता, अभी तो देवकी की रक्षा कर लेनी चाहिए, पुत्र होगा कि नहीं होगा क्या पता, ये तो भविष्य की बात है। कंस सुनो भोजराज, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है ना, इनके संतान से भय है ना, मैं आपको वचन देता हूँ, संस्कृत में शब्द ऐसा लिखा है, कंस मैं आपको वचन देता हूँ इसके सारे बच्चे मैं आपको दूंगा उसको छोड़ के जिससे आपको भय है, लिखा ऐसे है संस्कृत में, उसकी छेद करेंगे तो अर्थ ये निकलेगा, सारे बेटे आपको दूंगा लेकिन वो नहीं दूंगा जिससे आपको भय है। अगर भगवान किसी के घर में आए और उसको उठा के क्रूर कंस को देके आएंगे तो भगवान वहां क्यों आएगा, नहीं आएगा। यहाँ वसुदेव की वचन के ऊपर इतना विश्वास था कंस को, कच्छी से जाओ घर, कंस ने छोड़ दिया, वो अपने घर गए, समय आने के ऊपर पहला बच्चा पैदा हुआ। वसुदेव बच्चे को लेकर कंस को कहा ये पहला बच्चा है, कंस ने कहा इससे मुझे डर थोड़ी है, आठवें से है ले जा। वसुदेव कहता ये दयालु कैसे हो गया, कोई विश्वास तो नहीं किया जा सकता है। फिर भी बच्चे को लेके वसुदेव जाने लगा और नारद वहां से बोला ये फिर और इतना दयालु हो गया तो भगवान के आने में देर होगी। नारद नीचे आगे कहता है हे भोजराज कंस, मैं आ रहा हूँ देवलोक में, मैंने जैसे देखा सारे देवता यदुवंश में अवतार ले रहे हैं और तुम्हें मारने का सारा षड्यंत्र तैयार हो गया है, देवकी का आठवां गर्भ तुम्हें गिनती करने आती है, विष्णु का कैसे पता है? ये देखो ये आठ उंगली तुम गिनती करो, थोड़ा एक दो तीन चार थोड़ा यहाँ से करो तो आठवां एक हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ से करोगे तो ये एक है, यहाँ से गिनती करोगे तो आठ वाला एक हो जाएगा, ये पता नहीं कहाँ से आ जाए। आप तो बुद्धि कंस की भ्रष्ट ऐसी की नारद जी ने कि कंस ने उस बच्चे को तो बुलाया लेकिन तो देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और बच्चे को पत्थर पे पटक दिया। पांच बच्चे और भी ऐसे कंस ने मारे, छह बच्चे देवकी के मारे गए पत्थर के ऊपर, मां के सामने पटक के मारे गए, इसको बोलते हैं षड गर्भा। ये कौन थे? ये मरीची के पुत्र थे, ब्रह्मा जी के ऊपर हंसे थे। ब्रह्मा जी की एक बेटी वाक थी, उसकी प्रति ब्रह्मा जी उसके पीछे काम भाव से दौड़े और ये देवता के बेटे उसके ऊपर हंसे। ब्रह्मा जी ने शराब दिया कि असुर बन जाओ, तुम्हारा बाप तुमको मारेगा। काल नैनी के अपने बेटे हैं और काल नैनी कंस के हाथों मारे गए हैं। आगे द्वारका के भगवान श्री कृष्ण की लीला में एक दिन देवकी कहेगी, कृष्ण बलराम आपने अपने गुरु सांदीपनिक मणि का बेटा बहुत पहले मर चुका था, वो तो जमदोग से लाके दे दिया, मैंने मेरे छह बेटों को देखा ही नहीं है, मेरी इच्छा देखने की है। कृष्ण बलराम समूचे लोक में बलि महाराज के पास जाते हैं, बलि महाराज स्वागत करता है, क्यों आए? बोला हमारे माँ ने छह बच्चे आपके पास जो है इसको बुलाया है। बलि महाराज के पास वो छह बच्चे थे, उन छह बच्चों को कृष्ण बलराम लाएंगे और देवकी माँ उनको स्तनपान कराएगी और भगवान का प्रसाद पान करने के बाद ये छह असुर योनि से मुक्त होके वापस देवता होंगे। और ये छह का एक और अर्थ ये है, देवकी भक्ति है, कंस भय है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये छह अवगुण है। जब तक भय से ये नाश नहीं होते हैं तब तक भगवान हमारे हृदय में उतरेगा नहीं। अब जब छह का नाश हो गया तब भगवान के लिए जगह बनाने के लिए अनंत शेष भगवान शेष शैया के ऊपर खोलते हैं, बलराम की देवकी के उदर में आए। और जैसे बलराम देवकी के उदर में आए भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में देवी को बुलाया, बोला देवी तुम एक काम करो, बलराम जी को देवकी के उदर से लेकर रोहिणी के उदर में स्थापित कर लो, तुम खींच के ले जाओगी इसलिए उसका नाम संकर्षण होगा, वो बड़ा बलशाली होगा इसलिए उसको बलभद्र कहेंगे और वो सबको आनंद देगा इसलिए उसका नाम राम होगा। देवी ये तुम काम कर सकती हो, भद्रे तुम ये काम करो और दूसरा एक काम करना है, मेरी अनुजा छोटी बहन के रूप में आप यशोदा के वहां प्रकट होना। अब ये काम करो, मैं आपको वरदान देता हूँ, विंध्याचल में आपकी पूजा होगी गौरी नारायणी वैष्णवी के नाम से। ये वरदान दे दिया देवी ने, बलराम जी को यहाँ से उठा के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और अब भगवान श्री कृष्ण आठवां देवकी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए आए। तब भागवत में लिखा है भगवान अपि विश्व आत्मा भक्तानाम भयंकर, भगवान जो सबके हृदय में रहते हैं सबसे प्रेम करते हैं वो भक्तों को भय से मुक्त करने के लिए वसुदेव के हृदय में आ गए, वसुदेव के मन में आ गए। एक शब्द है भागवत में विशुद्धम सत्वम वासुदेव शब्दते, जब विशुद्ध सत्व में हम सत्वगुण से ऊपर जाएंगे तब वासुदेव कहा जाएगा, तब भगवान उसके मन में अवतरण होगा। वसुदेव के मन में भगवान अवतर हुए अपने सारे अंशों के साथ और फिर वसुदेव ने देवकी के हृदय में अपने मन से भगवान को स्थानांतर किया और इसके लिए लिखा है मानो वसुदेव ने देवकी को गुरु दीक्षा दे दी, अपने हृदय में प्रकट किया हुआ भगवान देवकी के हृदय में स्थापित कर दिया। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक दीक्षा, भगवान गुरु अपने हृदय में भगवान को प्रकट करता है, अपने शिष्य के हृदय में स्थापित करता है। देव रूपेणी देवकी जैसे भगवान हृदय में आए, चमकने लगी, प्रकाश निकलने लगा, कंस आगे कहता है इतनी सारी खुश दिख रही देवकी, इसके उदर में वो आ गया है जो मेरे को मारेगा। लेकिन भगवान के आने के बाद कंस का मन बदल गया, कंस कहता है स्त्री को कैसे मारूं, गर्भवती को कैसे मारूं, मेरी बहन मेरे पास आश्रित मेरे कारागृह में नहीं, जब पैदा होगा तब देखा जाएगा। कंस ने मारा नहीं और कंस खया घर, लेकर उसके दिमाग में चारों ओर से वो सिर्फ कृष्ण दिखे के कौन है मुझे मारने वाला, 24 घंटे कृष्ण के चिंतन में। और इस इधर ये समय की बात है, उस वक्त अब लिखा यह है कि विवस्वत मनवंतर, जो ये मनवंतर विवस्त एक पहले बात है ना, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण आते हैं। इसका मतलब अभी तक ब्रह्मा जी के 50 साल हो गए, तो जितने दिन हैं उन सब दिनों में भगवान श्री कृष्ण बार बार आते हैं, एक बार नहीं, एक दिन में एक बार आते हैं। अवतार और तो हमेशा आते रहते हैं भगवान विष्णु के, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण केवल एक बार आते हैं। और क्यों आते हैं ये चर्चा कल करेंगे, आज सिर्फ अवतार कर लेते हैं, कल थोड़े सिद्धांत बता देंगे, समय थोड़ा हमारा आगे जा रहा है तो सिद्धांत कल बताएंगे। आप फिर आज अवतार की बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण विवस्वत मन्वंतर की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में आते हैं। ये उनका टाइम हमेशा फिक्स है कि 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के लास्ट पार्ट में भगवान स्वयं श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। और ये जो द्वापर किया उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के आने का टाइम तो था ही, लेकिन युग अवतार धर्म स्थापन करने वाले के आने के लिए भी प्रार्थना की गई, जो दोनों मिलकर एक हो गए। तो ये सिद्धांत फिर बोलते हैं, फिर कहते हैं कि कली का प्रथम चरण, कलयुग का प्रथम द्वापर का अंत में महीना कौन सा था? श्रवण करने से भगवान मिलते, आप श्रवण कर रहे हैं ना, श्रवण से भगवान मिलते, तो श्रावण महीने के पीछे क्या आता है? भाद्रपद। तो भगवान भद्र मतलब सबका भला करने के लिए श्रावण के बाद भाद्र महीने में वो भी अपने नाम के कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन, सात तिथि इधर सात तिथि इधर, अष्टमी के दिन और चंद्र के उदय होते ही मतलब 12 बजे रात को अंधेरे को चीरते हुए हर्षण योग में और रोहिणी नक्षत्र में प्रकट होते हैं। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो पहले काल की शुद्धि होती है। आदमी कहते हैं अभी टाइम खराब हो गया है, भगवान के आते ही टाइम सबका अच्छा हो जाता है, सबका काल अच्छा हो जाता है। बरसात की मौसम में बादल होने चाहिए, आकाश में तारे चमकते हैं, ऐसा आप जगजग जगमग जगमग तारे आकाश में चमक, पृथ्वी तो कहती है हमारे पति आ रही है, वो दुल्हन की तरह सज जाती है, सब ऋतु के फल चारों ओर से आ जाते हैं, सुगंध ही सुगंध हो जाती है। और फिर जल नदियां ऐसी स्वच्छ हो जाती हैं, कहती है कल हमारी बहन कालिंदी जमुना उसका भगवान से विवाह होगा, भगवान हमारे बहनोई हो जाएंगे, वो नदियां बड़ी सुंदर हो जाती हैं, वन दर्शन सुंदर हो जाता है और ब्राह्मणों की अग्नियां अपने आप जलने लगती है। बादल समुद्र के पास जाके प्रार्थना करते हैं रोज, समुद्र तुम्हारे पेट में भगवान सोया हुआ है, हमें दर्शन करा दो। समुद्र कहता है पहले हमारा खारा पानी ले जाओ, मीठा बनाओ, लोगों की सेवा करो, तब भगवान का दर्शन कराएंगे। लेकिन आज बादल मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं समुद्र के पास, कह रहे हैं देखो देखो अब जो आएगा इसका नाम हमारे नाम के पीछे होगा, इसको घनश्याम कहेंगे और घन हम हैं बादल, हमारा नाम से ये घनश्याम होगा। बादल बड़े मुस्कुराने लगे और उसके बाद देवता बड़े प्रसन्न हो गए, काले किन्नर और सुंदर गंधर्व आपस में मिलके नाचने लगे, चारण और विद्याधर, चारण तो पैसा लेके गाने वाले और विद्याधर देवताओं के दोनों आपस में, अप्सराएं नाचने लगी किन्नरों के साथ, पक्षियों में वेर विरोध चला गया, शेर हिरण के साथ नाचने लगा, ऐसा वातावरण सुंदर हो गया। और जैसे ही ये वातावरण तैयार हो गया, आधी रात को लिखा है, आधी रात का समय था, देव रूपेणी देवकी के गर्भ से सबके हृदय में रहने वाले भगवान जैसे चंद्रमा उगता है ऐसे प्रकट हो गए। लिखा है जो सबके हृदय में भगवान होते हैं वो देवकी के उधर से प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए उससे पहले देवता प्रार्थना करने के लिए आए, शंकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने बहुत सुंदर प्रार्थना की, भगवान आपका वचन सत्य है, आपने कहा था आऊंगा और आप आ ही गए, और आप नहीं आते तो हमें क्या पता लगता कि भगवान है कौन, आप आए तो हमें पता लगा कि कौन भगवान है, और आपके चरणों की नौका बनाकर संसार सागर पार कर जाएंगे लोग। और फिर देवताओं ने कहा देवों की माता देवों की तुम चिंता मत करो, वसुदेव अब तुम्हारे घर में सबके रक्षा करने वाला है। देवता विदा हुए, भगवान का प्रकट होते ही वसुदेव ने पहले देखा चार हाथ शंख चक्र गदा और बीज कुंडल पहने हुए, और भगवान ने बोलना शुरू किया वसुदेव देवकी तुमने पहले तपस्या करके मेरे को बेटे के रूप में मांगा था, पहले मैं आपके घर में प्रश्नी गर्भा होके आया और फिर आप कश्यपुर आदि की हुई, मैं आपके घर में वामन देव हुआ, और अब तीसरी बार वसुदेव और देवकी तुम्हारे घर में वसुदेव कृष्ण होके आ रहा हूँ, आपने मेरे जैसा बेटा मांगा, मेरे जैसा और कोई होता नहीं है, इसलिए मैं तीन बार अपने वचन को पूरा करने के लिए आया हूँ। और तब वसुदेव ने भगवान को प्रार्थना की, भगवान को कहा आप तो आप अब त्रिलोक की नाक सब कुछ आपसे निकलता है और आप हमारे से निकलो, ये तो दुनिया में आश्चर्य है। देवकी ने कहा कि ये चार हाथ वाले रूप से मुझे डर लगता है, अब बच्चे बन जाओ। पर भगवान रोने लगा, बोला रो मत, बोला बच्चा भी मानो रो मत, तुम्हें डर लगता है। तब भगवान बोले वसुदेव मेरे को यहां से ले चलो, तुम्हें डर लगता है तो सूरवीर के पुत्र हे सूरसेन वंश के मुझे यहां से ले चलो और मुझे जाके नंद गोकुल में छोड़ के आओ। अब उठाया है वसुदेव ने, जैसे कृष्ण को ऐसे उठाया है गोद में कृष्ण वाहक वसुदेव। हाथ से हथकड़ी खुल गई, पांव से बेड़िया खुल गई, दरवाजे खुल गए। दरवाजे कैसे खुल गए? जैसे सूरज उगता है, अंधेरा चला जाता है, कोई आवाज नहीं हुए। योग माया ने सबको सुला दिया। वसुदेव कोई भी भगवान श्री कृष्ण को धारण कर देगी, भक्त गले में माला रहे, माला में भगवान नाम के रूप में गले में धारण करते हैं तो सारा समस्या दूर हो जाती है। कोई पूछता नहीं है, हमारे पास तो ये इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है, ये गला हुए डाल के कहीं भी जाओ सब रास्ते खुले हुए होते हैं। हमने तो इसको देख लिया, ये तो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण हमारे पास है। बाहर निकले, बादलों ने कहा कि स्नान नहीं कराया है, बच्चे को ले जा रहे हैं, थोड़ी सी ऊपर से बूंदाबारी हुई, दोबारा भगवान का स्नान होने लगा। इंद्र ने कहा कोई देख न ले, बोला क्यों बरसात कर रहे हो? बोला ये बाहर खटिया डाल के सोए हुए हैं ना, बरसात हो गई सब अंदर चल जाएंगे तो कोई देखेगा नहीं। अब रोड सब साफ हो गए, बाहर किसी की पार्किंग नहीं है। आज पहले खटिया पे लोग बाहर होते थे, अब गाड़ियां बाहर खड़ी होती है। ये पार्किंग का प्रॉब्लम पहले भी था, अभी भी है। पहले लोग रोड के ऊपर खटिया लंबी लंबी खड़ी करके सो जाते थे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और वसुदेव जब बरसात जोर से होने लगी तो शेषनाग पीछे से आके वसुदेव के ऊपर छाया करने लगा। पीछे से आया कि वसुदेव देखेगा तो डर जाएगा और भगवान के ऊपर पानी न लगे। और यमुना जी के ऊपर तो उस दिन जैसे समुद्र की तरह बह रही है। वसुदेव बगैर भय के अंदर प्रवेश किया, यमुना जी ऊपर आने लगी। वसुदेव ने भगवान को सर के ऊपर उठा लिया, जो छाती से ले जा रहे थे टोकरी में। भगवान को बच्चे को कोई टोकरी में ले जाता है? कोई बैंगन है, कोई बैंगन है क्या, भिंडी है क्या, आलू है क्या? अरे छाती से ले जाता है। लेकिन जब पानी यहाँ से ऊपर आया तो वसुदेव ने सर के ऊपर उठा लिया। और जब सर के ऊपर उठा लिया तो भगवान के चरण भगवान ने बाहर निकाले। जन्मा जमुना जी ने चरण का दर्शन किया और कहा कि इनसे आगे मुझे विवाह करना है। इससे जमुना जी ने ऐसे दो रथ लिखा है कि जैसे हिंद महासागर ने राम जी को रास्ता दिया था, ऐसे आज जमुना जी ने कृष्ण को रास्ता दिया। और वहां गोकुल के अंदर योग माया ने सबको सुला दिया था। वहां की कथा भी आज करने का समय नहीं है, लेकिन नंद का विवाह हुआ था सुमुखा गोप की बेटी यशोदा से। बड़ी उम्र हो गई, संतान नहीं था, एकादशी का व्रत किया और नंद के हृदय में नील कमल भगवान प्रकट हुए और यशोदा के हृदय में नील कमल प्रकट हुए। योगिनी पूर्णमासी ने कहा तुम्हारे घर में नंद बच्चा होगा। और यहाँ भी यशोदा के यहाँ प्रसव होने की तैयारी सब पूरी है, यहाँ भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि नंद के घर में भी कोई बच्चा होने वाला है। और वसुदेव रात को आए और वो बच्चा लाए थे, उसको रखा यशोदा के पास और वहां बच्ची जो थी उसको उठाया और वापस गए भगवान के पिता को। यमुना ने फिर रास्ता दिया, जैसे जेल में पहुंचे हाथ में हथकड़ी बेड़ी, बच्ची वहां पहुंच के रोई और कंस को बुलाया गया। कंस के हाथ से निकली, आकाश में अष्टभुजा में देवी ने कहा तेरे को मारने वाला पैदा हो गया। कंस डर गया, कंस ने प्रार्थना की वसुदेव देव की, देखो ये देवता भी झूठ बोलते हैं, कहां आठवां बच्चा तुम्हारा, ये तो देवी आ गई, मेरे को माफ कर दो। कंस ने दोनों को जेल से निकाल दिया। थोड़ी देर के लिए बुद्धि कंस की ठीक हुई, घर गया तो वापस वही बदमाश चार चंडाल चौकड़ी के लोग मिले, अगासुर बकासुर, और उन्होंने कहा कि डरने की बात क्या है। और वहां दूसरे तरफ यशोदा के वहां भगवान पहुंचे, रोने लगे, मां सोई हुई है। वहां भगवान के रोने को सुनकर सब जाग गए और बाहर दो भागती हुई ब्राह्मणी ने कहा नंद तेरे घर में लाला हुआ है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बोलो नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हरे कृष्ण। तो अपने पास समय कम है, कथा में यहाँ विराम देते हैं। भगवान का आज प्रकट्य हो गया, कल थोड़े सिद्धांतों को कैसे भगवान की लीलाएं दो दिन सुननी है। अब तो भगवान की लीलाएं, बाल लीलाएं, मथुरा की लीलाएं, गोकुल की लीलाएं, मथुरा की लीलाएं सब करेंगे एक दो दिन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, थोड़ा समय ज्यादा लिया आपकी छुट्टी का और इस देश के स्वतंत्र कहता के दिन में भगवान को प्रकट करके इस देश को भी स्वतंत्र कर दिया और सुखी कर दिया और आप रहने वालों को भी, आप यहाँ रहने वालों को भी भगवान सुखी रखे। इन शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण।